ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தத்துவ ஜிக்யாசு சஜ்ஜனு ஹம்லோக் दश वैदिक शांति मंत्रों के ऊपर विचार कर रहे हैं. कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद में प्रथम अनुवाक, प्रथम वल्ली के प्रथम अनुवाक में जो उक्त प्रथम वैदिक शांति मंत्र का हम लोगों ने विचार किया, जिसमें शरीरस्थ प्राण एवं चक्षुरादि इंद्रिया के जो अभिमानी देवता है उससे प्रार्थना की गई, क्योंकि इंद्रियों की स्वस्थता और स्थिरता से ही ब्रह्मज्ञान संभव है. समष्टि और व्यष्टि वायु से प्रार्थना की गई और स्तुति की गई कि आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है इत्यादि रूप से, और आचार्य और शिष्य की रक्षा की प्रार्थना की गई. विद्या की प्राप्ति से जो मिलने वाला लाभ है, फल, वो यदि प्राप्त हो जाए तो वही रक्षा है, और अंत में तीन बार शांति शब्द का उच्चारण किया गया. ओम शांति ही शांति ही शांति ही. इसका उद्देश्य आचार्यों ने बताया कि तीन बार शांति शब्द का जो उच्चारण किया गया उससे तीन प्रकार के जो ताप है उनकी निवृत्ति की कामना की गई. देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि हम लोगों को जो कष्ट है, कष्ट आते रहते हैं, उन सभी कष्टों को तीन विभाग में बांट दिया गया है. आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप. संसार में सभी देहधारी जीव इन तीनों प्रकार के ताप से संतप्त है. इसलिए ये तीनों की निवृत्ति ही मोक्ष है. इन तीनों तापों का विघात होना चाहिए. तीनों तापों का विघात तभी होगा जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी, स्वरूप का ज्ञान होगा, हम लोग बाह्य उपाय करते रहते हैं, किंतु वो उपाय इतने कारगर नहीं है. स्थायी रूप से इन तीनों तापों की निवृत्ति कर ही नहीं सकते. सांख्यकारी का के प्रथम कारिका में कहा गया दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तद विघात के हेतु दृष्टि सा पार्था चेन्नेकांत अत्यंत तो भावात। प्रत्येक मनुष्य को ये जो दुख त्रय है उनके अभिघात की जिज्ञासा करनी चाहिए, उसमें जो हेतु है जिससे इन तीनों का अभिघात हो जाए उनकी जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है, सांख्य दर्शन का सिद्धांत अलग है, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के ज्ञान से उनके वहां इन तीनों तापों की निवृत्ति बताई, लेकिन ये जो वैदिक सिद्धांत है उसमें तो ब्रह्म ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति है। उस कारिका में प्रश्न उठाया गया कि कोई कहे कि इन तीनों दुखों की निवृत्ति के लिए व्यक्त अव्यक्त ज्ञ की जिज्ञासा की क्या जरूरत है, प्रत्यक्ष रूप से उसकी निवृत्ति संभव है, तो फिर इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करे। तो सांख्य कारिकाकार बता रहे हैं एकांत अत्यंत तो अभावात, इन तीनों दुखों की निवृत्ति के लिए जो हम लोग उपाय कर रहे हैं वो उपाय स्थायी नहीं है, एकांतिक नहीं है, अत्यंत निवृत्ति नहीं है उसमें। आजकल मेडिकल विज्ञान बहुत ही आगे बढ़ गया, ठीक है आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति कर सके, लेकिन जो आदि भौतिक है और आदि दैविक है उनकी निवृत्ति तो मेडिकल विज्ञान कर ही नहीं सकता। आध्यात्मिक दुख जैसे ज्वर वगैरह है, जो शरीर में होने वाले जो दुख है रोग आदि, तो वो रोगों की निवृत्ति मेडिकल से संभव है, दवा ले लेंगे तो वो जो है वो भी शत प्रतिशत तो वो लोग भी नहीं कहते कि भी ठीक हो ही जाएगा। और ये आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति के लिए विकास तो बहुत हुआ, कई प्रकार की दवाएं मिलती है आजकल और थेरापियां भी बहुत प्रकार की है, किंतु कोई थेरापी शत प्रतिशत गारंटी नहीं दे सकती है कि आप हमारी दवा लेंगे तो रोग की निवृत्ति होगी। बुखार आ रहा है आपने दवा ली पैरासिटामोल तो निवृत्ति हो गई, लेकिन पुनः हम बुखार नहीं आएगा ये कह सकते, ये संभव नहीं है। हफ्ता दस दिन के बाद पुनः भी आ सकता है। तो आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति के लिए ये दवा है, अल्पकाल के लिए उससे छुटकारा मिल सकता है लेकिन स्थायी छुटकारा नहीं है। वैसा ही आदिदैविक का भी है, आदिदैविक दुख उनको कहते जो देवकृत दुख है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, गर्मी बहुत बढ़ गई, ठंडी बहुत बढ़ गई, तो कैसा लगता है बताओ? ठंडी बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा नहीं, और गर्मी बहुत बढ़ जाए तो तब भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए ये जो है आदि दैविक दुख है उसके लिए ये जो मेडिकल विज्ञान काम नहीं करेगा। तो आप कहते हैं कि ठीक है मेडिकल विज्ञान काम नहीं करेगा लेकिन टेक्निक तो काम करेगी। बहुत ठंडी बढ़ गई तो एयर कंडीशन लगा लिया, टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया तो ठंडी से छुटकारा हो जाता है, गर्मी से भी छुटकारा हो जाता है। लेकिन वो कमरे में रहेंगे तब तो बाहर निकलेंगे तो ये तो नहीं कि आप जो है बाहर सर्वत्र ये सिस्टम लगा सके, ये तो संभव नहीं है। और बाहर तो जाना ही पड़ेगा, चार महीना ठंडी चलेगी, चार महीना गर्मी चलेगी, आप कहेंगे कि हम कमरे में बैठे रहेंगे तो खाएंगे क्या? इसलिए काम धंधा तो करना ही पड़ेगा, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो इससे निश्चित है कि अल्पकाल के लिए ही उन सब साधनों से निवृत्ति है, वो साधन सार्वकालिक नहीं है। चाहे कैसे भी साधनों का आविष्कार हो जाए लेकिन ये जो दुख है उन दुखों की निवृत्ति आत्यंतिक नहीं है, एकांतिक नहीं है। लोग तो आजकल वहां यहां तक बोलते हैं कि अब मेडिकल विज्ञान इतना आगे बढ़ गए, इतनी सुख सुविधाएं हो गई, हर चीज ओपन हो गई, खुली हो गई, इसलिए शास्त्र की नहीं विज्ञान की बात माननी चाहिए। ये विचारधारा बढ़ रही है, वो कह रहे विज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। अब शास्त्र को एक बाजू रख दो कहते, या तो कहते हैं शास्त्र की व्याख्या बदल दो, ऐसा भी कहते कि शास्त्र को भी विज्ञान की दृष्टि से देखने की आदत हम लोगों की हो गई। अभी आजकल के जो बुद्धिजीवी है वो सब यही सोचते हैं, विज्ञान को शास्त्र से नहीं परखते, शास्त्र के अर्थ को परखने के लिए विज्ञान को लगाते हैं कि देखो ये विज्ञान के अनुसार है कि नहीं, साइंटिफिक है कि नहीं। अरे शास्त्र को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, शास्त्र का अपना जो अर्थ है वो स्वतः है, यदि उसको माने या न माने शास्त्र को उससे कोई मतलब नहीं है। शास्त्र स्वतः प्रमाण है, कैसा है? स्वतः प्रमाण। दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, स्वतः और परतः, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान वगैरह जो प्रमाण है वो परतः है, उनको अपनी सिद्धि के लिए सहायक की आवश्यकता रहती है। किंतु जो शास्त्र है शास्त्र को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए जताने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, अन्य की अपेक्षा नहीं है, या शपथ की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने अर्थ को प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे लोक में ऐसा होता है कि नहीं, कुछ अपनी बात किसी को जतानी है तो सौगंध खाता है, कसम खाता है कि नहीं ये मेरी कसम, ये मैं ठीक ही कह रहा हूं, तो जताने के लिए जोर लगाना पड़ता है। शास्त्र को ऐसी अपेक्षा नहीं है, वो तो जो है जैसे आपकी जार है एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे शहर जा रहे, अब रास्ते में माइलस्टोन आते उस पर लिखा हुआ रहता है कि अमुक शहर अब इतनी दूरी पर है, या कुछ तीर तीर के निशान आते हैं कि भी आप जहां पर जाना चाहते हैं उस जगह इधर है, अब उसकी बात न मानते हुए आप कोई अन्य साइड में मुड़ जाए तो वो जो है साइन बोर्ड आपके पीछे नहीं दौड़ेगा कि अरे तुम इधर क्यों जा रहे हो, इधर चलो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके निर्देश के अनुसार चलोगे तो गंतव्य स्थान तक निर्विघ्न पहुंचोगे। और कहेंगे अरे ऐसे तो लिखे हुए रहते ही, इसकी बात थोड़ी मानी जाए, देखो सब इससे तो ये रोड बढ़िया, तो आप बढ़िया रोड देखेंगे या गंतव्य देखेंगे? आपको जाना है उस रोड खराब है और दूसरा रोड बढ़िया है तो कहते इस रोड पर बढ़िया गाड़ी चलेगी, इस पर तो अच्छा नहीं है, आप इसी पर चलाइए तो पहुंचेंगे नहीं। तो वह शास्त्र का ऐसा संसार का मार्ग हो बढ़िया दिख रहा, लेकिन जो मोक्ष का मार्ग है वो ऊपर से तो कंटीला दिख रहा, लेकिन जाना तो उसी के ऊपर होगा, तभी आप अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए शास्त्र है ना, वो स्वतः प्रमाण है, निरपेक्ष रवह है, निरपेक्ष रवह श्रुति ही। मीमांसा के आचार्य कहते हैं जो निरपेक्ष रवह है वही श्रुति है, इसको अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है। ऐसे शास्त्र प्रमाण से ही ये संभव है, अन्य किसी प्रमाण से नहीं। इसलिए शास्त्र को अपने अर्थ प्रकट करने के लिए या बलवान बनाने के लिए ठीक है युक्ति की अपेक्षा जरूर, युक्ति से और अर्थ में बलवत्ता आती है, किंतु ये नहीं कि उसको विज्ञान की विज्ञान के सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो, विज्ञान को उसकी आवश्यकता है, क्योंकि आजकल का जो विज्ञान है वो तर्क के ऊपर टिका हुआ है, कोई ऐसा निरपेक्ष आधार तो है नहीं, और तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। व्यास जी ने कहा तर्क अप्रतिष्ठानाद अन्यथा अनुमेयम एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग इत्यादि एक सूत्र है दूसरे अध्याय में, उसने कहा तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आज जिसने तर्क को स्थापित किया, तर्क के बल पर अपना सिद्धांत स्थापित किया, कल कोई और इस बड़ा बुद्धिमान आ जाएगा तो उस तर्क का क्या कर देगा, खंडन कर देगा। तो विज्ञान है वो तर्क के ऊपर आधारित है, और हमारा जो वैदिक सिद्धांत है वो शास्त्र के ऊपर आधारित है। इसलिए तर्क से शास्त्र को अन्यथा नहीं कर सकते हैं, इसलिए शास्त्र का जो प्रामाण्य है वो सार्वकालिक है, चाहे कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, चाहे सत्य हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कली हो, सभी युग में शास्त्र का प्रामाण्य जो है वो बराबर ही रहता है, देश काल और परिस्थिति से उसको बदला नहीं जा सकता है। और जिसको बदला जा सके उसमें प्रामाण्य रहेगा ही नहीं, वो तो अप्रामाणिक बात हो जाएगी जिसको बदली जा सके। अब देखो विज्ञान की बात जो है वो बदलनी पड़ती, उसमें नई नई आविष्कार होते ही रहते, पुराने जो है किनारे हो जाते। इसलिए शास्त्र जो है जो उपाय बता रहे हैं वही इत्रिताप की निवृत्ति में उपाय है। उससे ही संभव है। इसलिए आदि देविक कोटि के जो ताप है उनकी निवृत्ति जो है वो जैसे यक्ष राक्षस आदि के उपद्रव है वो आदिदेविक है, देवकृत है। देव से अभिप्राय है अग्नि देव भी, और देव से ये भी ले लीजिए अपना जो प्रारब्ध, या फिर कौलिक शास्त्र में जो प्रयोग बताए गए उस प्रयोग यदि किसी के ऊपर कोई करता है तो वही यक्ष राक्षस आदि का उपद्रव, उससे व्यक्ति दुखी होता है तो उसमें मेडिकल की दवा का कोई काम नहीं है, उससे उनकी निवृत्ति संभव नहीं है। इसमें तो जो है मंत्र जाप वगैरह ही कारगर, लेकिन वो उपाय भी स्थायी तो नहीं है। और आदि भौतिक जो ताप है चोर व्याघ्र आदि से जो होने वाले, अन्य भूतों से जो होने वाले ताप है, वो भी आप कहेंगे कि हम उसके लिए भी उपाय कर लेंगे, लेकिन कोई भी चाहे उपाय करे वो उपाय स्थायी नहीं है। स्थायी उपाय केवल ये स्वात्म ज्ञान ही है। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही यहां पर ये शांति पाठ का यहां पर जो है उल्लेख किया गया है उपनिषद में, और उसकी प्रार्थना इसलिए की जाती है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में जो विघ्न है उस विघ्न का विघात हो जाए तो हमको उपनिषद प्रतिपाद्य जो है ब्रह्म तत्व का बोध सरलता से हो सकता है। इसलिए ये ओम शांति 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 से तीन तापों की निवृत्ति की कामना की गई। तो इस तरह से ये जो तैत्तरीय उपनिषदोक्त जो है शांति मंत्र का हम लोगों ने अर्थ समझा। अब जो द्वितीय शांति मंत्र का पाठ किया जाता है जो तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली में भी है और ये कठोपनिषद में भी जो मंत्र मिलता है वो है, उसका हम पाठ करते हैं। वो भी विद्या की प्राप्ति में जो संभवित विघ्न है उस विघ्न का शमन करने के लिए ही है। आप सब लोगों के पास जो है उसमें देखिए, हम लोग उसका उच्चारण करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै